प्रभु सिखा रहे स्वयं वो जान लीजिए ज्ञान लीजिए ज्ञान लीजिए जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए
मशीन पर प्लेटफॉर्म पे लगी वजन तुलने की मशीन पर चढ़ गया कुत्ता। मैंने मजाक के तौर पे उसमें सिक्का डाल दिया। वजन आ चुकी थी और पीछे छपी हुई थी भाग्य लिपि। भाग्य लिपि में लिखा था शक्ति दांतों में है, शक्ति दांतों में है, भारत का प्रजातंत्र आपके हाथों में है। तो इसके लिए इसके बाद में एक रचना सुनाता हूँ। कहते हैं कि प्रीत का प्रतीक मार मार न बन जाए, मार पीत लाभ का व्यापार न बन जाए, मेरा सारा देश ही गद्दार न बन जाए, जागते रहो। फिर कहते हैं कामना है सबकी की राम राज हो, कामना है सबकी की राम राज हो, तब तो ताज किसी का न मोहताज हो, वस्तु है समान सब को अनाज हो, निष्कलंक न्याय नीति पूर्ण पात हो, लाचारी समय की अन्ना चार न बन जाए, मेरा सारा देश ही गद्दार न बन जाए, जागते रहो। मेरा परिचय, मैं कांदिवली से हूँ, बॉम्बे से। मेरा नाम है रमेश भाई जगड़।
तो और अपना अनुभव सुना। शरीर का नाम विनोद है और मैं बैंक में ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ। कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूँ और 2004 फरवरी में हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी मुझे, और उस समय मैं गुजरात में पोस्टेड था, यहाँ अहमदाबाद के करीब में छोटा सा टाउन है, वहाँ पे पोस्टेड था। तो जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक हुआ था, तो अचानक ही हुआ था। सुबह रेस लगाने जा रहे थे तो उसी समय जो है ना मेरे को ब्रीथलेसनेस हुई, तो बड़ी हैरानगी हुई कि कभी कोई ऐसा ब्लड प्रेशर या ऐसा शुगर वगैरह तो थी नहीं, ना कोई सिम्टम्स थे, तो अचानक ही। और मैं रहता भी यहां अकेला था, मेरी फैमिली कुरुक्षेत्र में हरियाणा में ही थी, तो जो कुलीग लोग थे वो उठा के मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। पास में डॉक्टर था, कॉलोनी में रहता था, तो उन्होंने अपना इलाज शुरू किया। मैं तो खैर बेहोश हो गया, और सुबह जो है मेरी फैमिली को उन्होंने इन्फॉर्म किया, मेरे कुलीग से सुबह मेरी फैमिली भी आ गई कुरुक्षेत्र से यहाँ पे, अगले दिन शाम तक पहुंचे वो लोग। तो इस दौरान तो यहाँ के लोगों ने जो सिटी था छोटा सा कड़ी नामक सिटी था, तो वहां के लोगों ने संभाला। तो ऐसा मतलब एक भय मन में बैठ गया, सब कहने लगे कि बड़ा भारी हार्ट अटैक हो गया और डिप्रेशन जबरदस्त हो गया। हफ्ता भर तो हमें ये समझ ही नहीं आया कि हमें हुआ क्या। कभी किसी डॉक्टर के पास जाने लग जाते थे, पहले तो सप्ताह भर तो कहीं जाने ही नहीं दिया डॉक्टर्स ने, लिटा के रखा बेड पे। तो फिर हमारे युगल जो है वो यहाँ आई थी और साथ में और भी संबंधी थे, वो कहने लगे कि यहाँ तो हम जो है ज्यादा दिन रुक नहीं सकेंगे, तो इनको वापस हम लेके जाएंगे अपने हरियाणा में, कुरुक्षेत्र ले गए मुझे। और कैसे लेके गए, बड़ा मतलब अलग सा सीन है वो, बिल्कुल गाड़ी को भी स्टेशन पे जो ट्रेन होती है ना उसके पास में लगाया गया और मुझे उठा के जो है ना उसमें लेके, और 2 महीने तक मैं बेड पे रहा। जबरदस्त डिप्रेशन हो गया, एंजियोग्राफी करवाई गई, उसके अंदर भी सभी हॉस्पिटल वाले कहने लगे कि आपको तो जो है ना इमीडिएटली जो है स्टंट डलवाने पड़ेंगे। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से मैंने पहला एंजियोग्राफी करवाया था। तो ऐसा मतलब डिप्रेशन जो उस समय का सीन है वो अगर मैं वैसे याद नहीं करता हूं, तो जब यहां आता हूं तो कभी कभी अनुभव सुनाना पड़ता है तो फिर वो सब याद आ जाता है। इस दौरान बीच में याद नहीं करता मैं कभी। तो डिप्रेशन इतना जबरदस्त था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ये लगता था कि बस मैं 1-2 महीने का ही मेहमान हूं, और कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा भय बिठा दिया मन के अंदर। जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे चेकअप करवाने के लिए, वो यही कहता था कि आपको इमीडिएटली जो है ना एंजियोग्राफी या बाईपास करवाना पड़ेगा। तो जब मैं वहां पे रेस्ट कर रहा था, मतलब समझिए 2 महीने की छुट्टियों पे था, तो तभी टेलीफोन पे हमारे एक रिलेटिव चंडीगढ़ में है, उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो विनोद, तुम ऐसा करो, एक बार ना ये स्टंट वगैरह या ऑपरेशन करवाने से पहले तुम एक बार माउंट आबू जाके आओ, वहां पे एक डॉक्टर हैं, उनको दिखा लो। तो हम तो डॉक्टर साहब को जो है ना दूसरे डॉक्टर्स की तरह ही समझते थे, क्योंकि हमें उस समय ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कभी कभार ये मेले वगैरह में वो जो लगाते हैं ना, प्रदर्शनी लगाते हैं, वहां तो थोड़ा वो जानते थे, अन्यथा कहीं भी हमें ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पता नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो माउंट आबू तो गुजरात के करीब ही है, अब हम जब वहां जाएंगे तो एक बार इन डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। तो डॉक्टर साहब से हमने टेलीफोन पे बात की और हम दोनों वाइफ हस्बैंड जब यहां गुजरात में वापस आए 2-3 महीने के बाद, मैंने अपना ऑफिस अटेंड करना शुरू किया, तो फिर हम डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। तो डॉक्टर साहब से जब मैं मिला तो मुझे वो सीन याद है कि बहुत सारे पेशेंट थे बाहर और मैं उनमें सबसे पहले या दूसरे नंबर पे था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे सबसे बाद में चेक किया। मैंने कहा मेरा नंबर तो पहला दूसरा था। डॉक्टर साहब मुझे बिठाए थे, बाकी सबको चेक किए जा रहे हैं जो मेरे बाद में आए। चलो मैं कहा ठीक है, अब तो आए हुए हैं तो बैठने तो पड़ेगा। अब विधाता की तो क्या मर्जी थी कि वो डॉक्टर साहब मुझे सबसे बाद में देखना चाहते थे। तो 1.5-2 घंटे में डॉक्टर साहब ने जितने भी मरीज बैठे थे उन सबको निपटा दिया और फिर उसके बाद 2 घंटे मेरे साथ बैठे हैं। और उस दौरान जो डॉक्टर साहब ने मुझे ढंडास बंधाया, मेरी बात सुनी, अपनी बात कही, तो हमें ना ऐसा यकीन हो गया कि अब जो है ना यहां ये बिल्कुल प्रॉपर जगह पे है, सही जगह पे हम पहुंच गए। तो उन्हीं दिनों फिर थोड़े दिनों के बाद कैंप था, तो कैंप मैंने वो अटेंड किया, जैसा अभी आपका कैंप है ऐसा ही कैड का कैंप लगा हुआ था। अप्रैल या मई 2004 की बात। तो उन 7 डेज के अंदर, 6 डेज के अंदर, मतलब कहां तो मैं समझिए कि चल भी नहीं सकता था, सैर भी नहीं कर सकता था। इधर से अच्छी फोटो और कहां जहां हम जो ऐसे पिकनिक मनाया गया, तो मैं और मेरी पत्नी सबसे ज्यादा नाचे, इतनी खुशी हुई हमें और सारा भय अंदर से निकल गया, ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा साइकोलॉजिकली इतना जबरदस्त हो। फिर डॉक्टर साहब ने जैसे टेक्निक्स बताई ना, जो तो डॉक्टर साहब जैसे बताते थे बाबा के बारे में बताते थे या और दूसरी बातें बताते थे, योग लगाना सिखाते थे, तो मेरा योग नहीं लगता था, मैं वैसे आंखें बंद करके बैठा रहता था और जो कागज देते थे ना उस पर कुछ भी लिख देता था, मेरे को मंदिर नजर आया, मेरे को ये जो थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा होता है ना, तो योग नहीं लगता था। फिर लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं एंटर हुआ ना यहां पे, पहले दिन डॉक्टर साहब ने बोला कि चाय नहीं पीनी आपने, तो 2004 उस दिन से लेकर आज तक हमने चाय नहीं पी। ताली की बात है, डॉक्टर साहब ने कहा चीनी आपकी बंद, तो हमने लगभग 1.5-2 वर्ष तक बिल्कुल चीनी नहीं खाई। जो भी इन्होंने कहा ना कि ये आप चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा खाना खाना है, हमने वैसे ही खाना खाना शुरू कर दिया। बोले ऐसी सैर करनी है, हमने उसी तरह से सैर करने शुरू कर दी। ऐसे आपने सोचना है, पूरी सोच बदल दी अपनी। मैं सोचता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपनी सोच कैसे बदलूंगा, पहले तो आदमी और तरह से जीता है ना। हालांकि मैं मतलब प्योर वेजिटेरियन था, कभी ऐसा गलत गलत खाना नहीं खाया, लेकिन प्याज लहसुन तो घर में, पंजाबियों के घर में तो प्याज लहसुन इस्तेमाल होता ही है, वो तो हम करते थे, वो भी हमने छोड़ दिया उसी दिन से। उस दिन के बाद हमने कभी भी हमारे घर में प्याज लहसुन, और इतना स्वादिष्ट खाना बनता है, जो दूसरा खाना बनता है ना वो जीरे के तड़के का, और दूसरे लोग जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं वो कहते हैं आपके खाने में क्या होता है ऐसे। तो फिर ऐसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हर रोज मुरली सुननी है, और जिस टाउन में मैं रहता था उस टाउन में ब्रह्मा कुमारी सेंटर ही नहीं था। ये भाई, दो भाई बैठे हैं उसी टाउन के हैं, तो उस टाउन के अंदर ना ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं था। तो हमने कहा बाबा यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर ही नहीं है, हम मुरली कहाँ सुनेंगे। तो पास में 20-25 किलोमीटर पे महसाना और कलोल करके दो जगह है, वहां पे हमने सेंटर पे फोन किया कि बहन जी हमें तो हर रोज मुरली सुननी है और हम तो मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकते, हमारी तो मोटरसाइकिल चलाने भी बंद कर दी है, तो हम कैसे आएंगे। तो कहने लगे कोई नहीं, अब वहां पे आपके जो टाउन है ना उसमें एक भाई है, उसके घर पे मुरली जाती है, 5-7 भाई वहां सुनते हैं, तो वहां जाके आप सुन लो। तो हमने कहा भी हम तो जा ही नहीं सकते, हमें तो मोटरसाइकिल चला रही बहन है, वो तो 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो भाई घर पे आएगा आपको सुना। तो वो भाई हर रोज हमको घर पे आके मुरली सुनाता। फिर उस भाई की एक बेटी ज्ञान में चलती थी, वो उसको मिलने के लिए आई। मिलने के लिए आई तो एक दिन जब वो मुरली सुनाने के लिए हमारे घर पे आया तो वो भी साथ में आ गई। तो वो साथ में आई तो बोली कि भाई आपने वो साप्ताहिक कोर्स किया है? तो हमने कहा कि वो क्या होता है साप्ताहिक कोर्स का? बोले नहीं, सप्ताह का कोर्स करना होता है, उसके बाद मुरली सुननी होती है, उसके बाद धारणाओं पे चलना होता है, 4 धारणाएं होती है। उसको डॉक्टर साहब ने बता दिया था लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं किया था। तो उस बहन ने अपने सेंटर पे फोन किया कि यहाँ पे एक भाई है, उसको मैंने एक सप्ताह का कोर्स करवाना है, तो क्या मैं यहाँ रुक जाऊं? तो जो उसकी बड़ी बहन थी उसने बोला कि भले रुक जाओ। तो वो एक सप्ताह 8 दिन तक हमें हर रोज हमारे घर पे आके सप्ताहिक कोर्स करवाती थी। फिर वहां पे धीरे धीरे जो आसपास के टाउन थे उनको बहनों को बोला कि बहन यहाँ पे एक सेंटर बनाओ, तो वो फिर वहां पे सेंटर भी बन गया। हमारा जो बैंक का ऑफिस था ना, वो शुरू में वो ऑफिस होता था, सब वहां आते थे, वहां इकट्ठे होते। तो वहां पे अच्छा, आज वो बहन मेरे को मिली, यहाँ पे आके मिलने आई, तो बोल रही थी कि बहुत अच्छा सेंटर वहां पे चल रहा है कड़ी में। फिर हम कुरुक्षेत्र ट्रांसफर हो गए वापस, तो वहां पे हर रोज हम सेंटर पे जाते हैं, मुरली सुनते हैं। वहां पे हमने जो है ना कैड के जो दूसरे वहां के लोकल मरीज हैं जो संपर्क में आते हैं उनको वहां इकट्ठा किया, उनको समझाया। तो बहुत से जो हार्ट पेशेंट है ना वो संपर्क में आ गए, तो वहां पे बहुत अच्छी सेवा भी हो रही है। तो हमारा जो है संकल्प है कि डॉक्टर साहब को एक बार वहां लेके जाएं, और वहां भी ऐसा ना कैड का एक प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं।
कितने ब्लॉक से आप?
हाँ, तो मेरे हार्ट में 3 ब्लॉक थे, तीनों ही नालियों में। एक जो था जो जहां पे मुझे अटैक हुआ था, और मेरे हार्ट में नीचे ना चोट भी लगी थी, जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है ना उतनी जगह पे वो डैमेज भी हो गया। तो 3 ब्लॉकेज थे हमारे। और फिर ऐसे धीरे धीरे जो है ना मेरा यकीन बढ़ने लगा बाबा में, जैसे जैसे योग लगाते थे ना जैसे शक्ति मिलती थी, फिर भी योग नहीं लगता था, अपनी तरफ से बैठा रहता था, योग नहीं लगता था। एक दिन बाबा को ना मैंने एक पत्र लिखा, जैसे डॉक्टर साहब बोलते ना पत्र लिखो, तो मैंने एक पत्र लिखा बाबा को कि बाबा मेरे को सब कहते हैं कि मेरे को योग लगता है, वहां लेके गए तुम मुझे उस दुनिया में लेके गए, मेरे को तो कभी तुम कहीं लेके नहीं जाते। तो ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, हम पूरी धारणाओं पे चलते रहे। और 6 महीने तक जब ये धारणाएं, फिर 6 महीने के बाद एक और कैंप यहां पे लगा, हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो उस कैंप का मेरा अनुभव है कि उस कैंप के बाद जैसे वो कैंप खत्म हुआ ना, तो हमने अगले दिन से, जैसे संडे को खत्म हुआ तो अगले नेक्स्ट डे से हमारी बॉम्बे में ट्रेनिंग थी बैंक की तरफ से। तो मुझे अहमदाबाद से बॉम्बे जाना था, यहां से मैं सीधा ही अहमदाबाद गया, साथ में मेरी पत्नी थी, मतलब भय इतना था कि पत्नी मेरे साथ ही चलती थी हर टाइम। तो बॉम्बे के लिए हम जिस ट्रेन में बैठे ना, मेरा फर्स्ट क्लास में वो सीट रिजर्व थी। तो जैसे ही उसमें 8-9 बजे की बात है, उसमें हम बैठे ना फर्स्ट क्लास में, तो एयर कंडीशन में क्या था कि हमारा ना दम घुटने लगा, थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस फील होने शुरू। तो दम घुटता था तो हम उठ के बाहर आ जाते थे, और बाहर जो गैलरी थी उसमें लोगों ने सिगरेट बहुत ज्यादा पी रखे थे, तो वहां पे भी हमारा वो और परेशानी होती थी। फिर अंदर जाके लेट जाते थे, फिर दम घुटता था। तो हमारी पत्नी तो नीचे वाली बर्थ पे सो गई, हम ऊपर बैठ के बाबा का योग लगाने लगे। जगह थोड़ी थी तो फिर वैसे लेट गया, तो टेढ़ा सा हो गया, तकिया लगा के तो लेट गया था। तो लेटते लेटते थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा अब एक दूसरी दुनिया में चला गया योग लगाते लगाते। तो जो ब्रह्मा बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा मतलब एक तो होता है योग लगाना, एक होता है जैसे आप मुझे ऐसे मेरे सामने बैठे, ऐसे ब्रह्मा बाबा मुझे एक ऐसी झोंपड़ी थी उसमें लेके चले गए। तो मैं से लेटा हुआ हूं, पास में एक दो ब्रह्मा कुमारी बहनें खड़ी हैं, और बाबा जो है ना एक बर्तन जैसे पानी रखा था उसमें एक कपड़ा निचोड़ते वगैरह यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसमें कपड़ा निचोड़ते हैं, फिर लगाते हैं। और इतने प्यार से बाबा जो है ना मेरे से व्यवहार कर रहे थे, जैसे कि कोई हमारा बच्चा बीमार हो जाता है मान लो रात को, तो हम कैसे कैसे भाव होते हैं हमारे चेहरे पे, बिल्कुल ऐसे प्यार से बाबा मेरे पास बैठते हैं, मेरी सेवा करते हैं। और ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए, 4 बजे मेरे मोबाइल पे बोरीवाली स्टेशन के लिए वो मैंने लगाया हुआ था उठाने का अलार्म, तो मेरा अलार्म बजा ना, तो मैंने कहा कि मेरे को तो दर्द वर्द कहीं है ही नहीं, मैं कहाँ था एकदम लोग तो लगा। तो फिर हमने क्षमा मांगी, बाबा आप आज के बाद हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप लोग लगाए, नहीं लगाते हैं। फिर हमारा यकीन एकदम जो ना पक्का हो गया। फिर हमने कहा कि अपने मिसिज को कहा कि अब ना हम रिपीटेड एंजियोग्राफी कराएंगे, मेरे को लगता है कि मेरे हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो गए। तो ऐसे फिर 1.25 साल के बाद हमने दोबारा से रिपीटेड एंजियोग्राफी करवाया। रिपीटेड एंजियोग्राफी करवाया तो सब हैरान हो गए कि तो सारे जो है ना ब्लॉकेज खत्म हो गए हैं, कहीं थे भी थोड़े बहुत तो वो अभी हमें बिल्कुल कहीं भी कोई फीलिंग नहीं होती, ना कोई ऑपरेशन करवाया ना स्टंट डलवाया, बस बाबा के हो गए और बाबा ने जो है ना अपने शब्द दे दिए। तो आप ये हमारा अनुभव है किसी भाई के।
आपका नेचर कैसा था पहले?
बाबा ने किया ना।
हाँ, आपका नेचर कैसा था पहले?
जैसे नॉर्मल था, जैसे
आपकी हार्ट की बीमारी हुई क्यों?
हार्ट की बीमारी एक तो जो खाना था ना मेरा हैवी था, यहाँ पे मैं अकेला रहता था तो हमें ना एक सर्वेंट मिला हुआ था बैंक की तरफ से, वो खाना वो गुजराती था, उसको खाना पंजाबी तो बनाना आता नहीं था। और आसपास के गांव के लोग ना वो हमारे लोनिंग वगैरह काफी होती है तो वो घी दे के जाते थे, जब भी आता था ना गिफ्ट में घी दे जाता और वो खूब सारा घी, वो खुद भी उसने खाना होता था। तो अब हम पंजाब के थे तो वो खूब घी डाल के बनाता था, उसको भी स्वादिष्ट लगता था
पानी के वजह घी।
तो वो घी एक तो घी ज्यादा खाया गया। एक्सरसाइज तो बैंकर्स की कितनी एक्सरसाइज होती है, थोड़ा बहुत घूम लिए फिर लिए बस, तो फिर बैठ के बैंक में जा। तो उससे मेरा जो है ना एक कारण तो ये था, दूसरा आइसोलेशन भी था, घर से बाहर आ गए एकदम, कभी अलग से रहे नहीं थे, फैमिली वहां थी हम यहां थे, तो आइसोलेशन भी एक कारण हो सकता है। तो और मतलब इगोइस्टिक भी बहुत थे, काफी ज्यादा ईगो थी, नेचर बिल्कुल डिफरेंट थी, गुस्सा बहुत ज्यादा तो नहीं था मतलब नॉर्मल था, ईगो बहुत थी, मतलब इतनी ईगो थी कि हर आदमी तो हमारे केबिन में एंटर नहीं कर सकता था। और स्टाफ के साथ बिहेवियर भी बड़ा कड़क होता था, अभी तो सब बदल गया, सब जो है ना हमारा ऐसा हो गया कि वो कैबिन का दरवाजा हम खुला ही छोड़ देते हैं जो मर्जी आओ। और जो ऐसा देखते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है नीडी है, मतलब उसकी बात जैसे डॉक्टर साहब हर की बात सुनते हैं ना, समझते हैं पहले कि इसकी तकलीफ क्या हो सकती है, तो उसको जानने की कोशिश करता हूँ। तो डॉक्टर साहब जितनी हाइट तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा नकल करने की, वैसे ही भाषा बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन करता हूँ। अभी वहां पे जहां हम रहते हैं वहां पे हमें जेल की सेवा मिली हुई, तो हर संडे को हम कैदियों को जाके मिलते हैं, तो कैदी जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, कोई कहता है मैं इनोसेंट था, उनको फिर बाबा के मुरली सुनाते हैं, उनको बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी कोई समस्या जो बाबा के ढंग से सॉल्व हो जाए। तो ऐसे तो बिल्कुल नॉर्मल है, कभी फीलिंग ही नहीं आती, कभी जो है ना सोच में नहीं रहा कि भी हमें कभी हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा जो है ना
डायरेक्ट बाबा ने किया ना आपको।
चलो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। आप स्वर पे नहीं जाना, बाबा का गीत है तो बाबा को जाना।
बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में, वो दिन बीते अब बैठे हैं मीठी ठंडी छैया में, मीठी ठंडी छैया में। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया हो हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया हो भटक रहे थे यहाँ वहाँ उलझन में थे कि जाए कहाँ भटक रहे थे जहाँ वहाँ उलझन में थे कि जाए कहाँ इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया ओ भवरों के बीच नैया थी ओ भवरों के बीच नैया थी नैया बिनखी वैया थी भवरों के बीच नैया थी नैया बिनखी वैया थी घबरा के हमने पुकारा तो तारनहारा मिल गया ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया ओ माया से अब हम दूर हुए ओ माया से अब हम दूर हुए आनंद से भरपूर हुए माया से अब हम दूर हुए आनंद से भरपूर हुए हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल
ओम शांति
ओम शांति मैं जीपी सिंह बड़ौदा से आया हूँ पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में दो बात करूंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये डॉक्टर साहब जैसी हस्ती ये दुनिया में दूसरी कोई नहीं वो बाबा को पता था उन्होंने बीच में बोला था कि वो एक हार्ड नट है और इस दुनिया में कोई इंसान वो नट नहीं खोल सकता बाबा ने खोलने के लिए भी उसके लिए अलग अलग स्पैनर यूज किए और नट को ढीला किया और धीरे धीरे वो नट पूरी खुल गई जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और दूसरा क्या है कि मेरे को जो अटैक आया था ये 1998 में 16 जनवरी थी मैं ऊपर काइट फ्लाइंग कर रहा था पतंग उड़ा रहा था मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था तो मेरा बेटा मेरे साथ में था मैं बोला पापा वो पतंग को काटो मैं भी काटता गया और मुझे पेन चालू हो गया मैं नीचे आया लेट गया मिसेज को बुलाया तो मालिश की और सॉर्बिटेट दिया तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद ठीक हो गया अगले दिन फिर छत पे आ गया त्रिपतन सुड़ी को चालू शुरू की, फिर पेन चालू हो गया, फिर वापस नीचे आया तो पेन बढ़ रहा था। तो मेरा जो मेरे को एक्चुअली दो अटैक आए थे, फर्स्ट अटैक आया था 1996 में और सेकंड अटैक आया 98 में। वो अटैक आने के कारण तो बहुत लंबे है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि ये अटैक जो मुझे आया इस कंपनी के अंदर ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने के का रिजल्ट है। जो आदमी कंपनियों में ज्यादा एफिशिएंसी दिखाता है उसकी हालत ऐसी होती है। और डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस होगा, मैं मिल्टन के अंदर मटेरियल मैनेजर था, ठीक है, वहां काफी इंप्रूवमेंट्स किया, इतना इंप्रूवमेंट्स किया कि उन्होंने इतना अप्रिशिएट मुझे किया। मेरे चेयरमैन ने क्या बोला, मिस्टर सिंह जो मैंने ड्रीम में देखा था वो आपने इधर आके कर दिया। और तब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़नी शुरू हो गई। और एक आदमी है जिसके अंडर में वो सारे स्टोर्स दे देता है, स्टोर्स में रॉ मटेरियल स्टोर, एजेनिक स्टोर, उसके बाद में सेमी प्रोडक्ट स्टोर, उसके बाद में उसके अंडर में डिस्पेस दे दे, एक्साइज दे दे, परचेज पूरा दे दे, उसको अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा। जो भी डिपार्टमेंट वीक पड़ता था बोले सिंह साहब के अंडर में दे दो। फर्स्ट अटैक आया तो कंपनी वाले काफी घबरा गए, ट्रीटमेंट लिया, वापस 3 महीने के बाद हुआ, 1.5 साल के बाद में सेकंड अटैक आया, वो मेरा ब्लॉकेज वेंटिकल में, लेफ्ट वेंटिकल में था, डॉक्टर ने एंजियोग्राफी मैंने मेयो में करवाई और बायपास मैंने नोएडा में करवाया। और ये जो मुझे सेकंड अटैक आया, काइट फ्लाइंग कर रहा था मैं, रात को 9:30 बजे गया,
बाईपास करवाने के बाद आया,
नहीं ये सेकंड अटैक में बाईपास किया, वो मैंने आपको पहले ब्रीफ में बता दिया कि अभी वो लंबा बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उसका ये कारण था। तो जब भी मुझे सेकंड अटैक आया तो मेरे घर के पास में ही शोभाबेन रहती है जो सेंटर में जाती है, ये मुझे रात को 12 बजे, क्योंकि मैंने खुद ही अटैक में खुद ही मेरे डॉक्टर को फोन किया, मेरे को पहले डॉक्टर ने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया था मैं उसके पास में गया, उसको बॉम्बे जाने का था रात को बड़ोडा एक्सप्रेस में, उसने मुझे चेक किया, मेरे को बता कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, होता है मस्कुलर प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट गोलियां लेके दे दी, घर में आया तो पेन और बढ़ गया। फिर मैंने खुद ही डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया, वहां पर बीआर पटेल हॉस्पिटल से वहां डॉक्टर कौशिक है, उससे मैंने बात किया, बोले मैं तो अभी घर पर हूं, मैं कहा मेरे को मेरी हालत काफी खराब है, और मेरे को बोला कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए, घर पे तो नहीं आ सकता, मैं हॉस्पिटल में पहुंचता हूं। तो जो शोभाबेन थी जो सेंटर में जाती थी उसने क्या किया, यही प्रॉब्लम, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं किसी की स्टोरी सुनता हूं और सुनाता हूं तो मैं सेंटीमेंट करता हूं। उसने क्या किया, 12 बजे नहीं बात तो मैं पूरी बताऊंगा, उसने 12 बजे
पानी
आजू बाजू दौड़ के किसी के घर में से कार उठाया और मेरे को कार में डाल के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर भी आ गए थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास में वो एक हैवी डोज का इंजेक्शन आता है 4000 रुपए का, एक ही है, एक आपको अरेंज करना पड़ेगा, बोले ये तो मैं लगा देता हूं कि सीरियस है, लेकिन दूसरा अरेंज कर। अभी 12-1 बजे कोई हॉस्पिटल को ना, कोई केमिस्ट्री शॉप को लेनी थी, उसने बेचारे ने एक रिक्शे वाले को पकड़ा, रिक्शे वाले के कोई केमिस्ट पहचान वाला था, उसके घर में गए, उसको बुला के उसकी दुकान खुलवाई और जब देखा तो बोले इंजेक्शन तो है नहीं, अभी क्या करेंगे। वहां पर एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल था जो उनके पास में इंजेक्शन रहते थे, अभी उस टाइम हमारे पास सिर्फ घर में 1200 रुपए थे, उसके पास कुछ नहीं था, वो रिक्शा लेके ट्रस्ट में गई और इंजेक्शन मांगा, तो बोले कि पैसे के बगैर तो हम नहीं दे सकते आपको। उसने वहां से डॉक्टर साहब से बात करवाया, डॉक्टर कौशिक से, कौशिक ने फोन से बात किया भी दे दो उसको, वो दे दिया। ये बाद में मेयो में मैंने एंजियोग्राफी करवाई और नोएडा में बायपास करवा लिया। उसके बाद में क्या, वो जो मेरी जो नेबर में वन वर्ल्ड नेबर है, उसने अपना जो मकान था ना वो सेंटर को दे दिया और खुद अपार्टमेंट में रहने चली गई, यहां सेंटर डेवलप हो गया। तो मेरी डॉक्टर है वो, उसने मास्टर इन साइकोलॉजी किया है, और मेरा स्कूल के अंदर काउंसलर है और साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लेती है। उसने बोला पापा मैं सेंटर में जाऊं। मतलब तू क्या करेगी जाके वहां पर? हम तो बोले वहां शिव बाबा है। मैं कहा भाई तो बाबा तो टीवी में कितने रोज बदलते रहते हैं। मेरे को बोले नहीं पापा वहां पर योग सिखाते हैं। मैं ठीक है योग सिखाते आप जाइए। उसने जाना शुरू कर दिया वहां पर। वो मुरली सुन के आए मेरे पास बैठे, मेरे को मुरली सुनाए, मेरे को ध्यान नहीं देता था इतना। और फिर बाद में उसने लिटरेचर ला के मुझे देना शुरू कर दिया वहां से। पापा ऑफिस में बैठ के पढ़ो। थोड़ा मैं लिटरेचर पढ़ा, फिर उसने मुझे एक लाइट ला के दिया, बोले इसको देखिए आप योग करो। अभी योग कैसे करने का मुझे नहीं मालूम था, मैं उसको पूछूं, वो मुझे इतना समझा नहीं सके, लेकिन बाबा के बारे में बहुत बताती थे, बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसा करते हैं सब, मैं इतना देन ध्यान देता था। बाद में उसने मुझे क्या किया, मेरे को बोला मेरे को बोलते हैं कि हार्ट का शिविर होने वाला है, आप वहां जाइए। उसने सारे मेरी फाइलें निकाली, पीछे के रिपोर्ट्स निकाले और सेंटर में दे दिए। वो इधर भेजा, जहां से लेटर आ गया। तो ये क्या है कि फिजिकली मुझे यहां लाने का जो भेज है वो बाबा ने बनाया। मुझे यहां तक लाने के लिए उसने वहां सेंटर खुलवाया और ये एक लिंक बनाई और मैं यहां तक पहुंचा।
कैसा लग रहा है आपको?
अभी अच्छा लग रहा है, काफी बेटर।
हमने क्योंकि हम लोग स्पेशल वंस हैं, हमें अपने जैसे हम जैसे बाबा ने मुझे टच किया तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। दिल्ली छोड़ के यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा दिया, महीने में पहुंचा दिया, यहाँ पर सब छोड़ के, सब कुछ, सब बंधन तोड़ के एक महीने में मैं दिल्ली छोड़ के माउंट आबू पहुंच गया, सब कुछ छोड़ के। ऐसा अंदर से वैराग उत्पन्न हुआ दिल्ली से ना, ऐसा ही आपको भी मतलब ये जब लाया ना बाबा, इसमें भी कुछ स्पेशल दास समाये हुए हैं। हृदय की रोग बढ़ती जा रही है और कोई इलाज है नहीं, बाईपास भी करके कोई ठीक हो जाता, ठीक नहीं होते हैं, एंजियोप्लास्टी करके भी ठीक नहीं होते हैं। तो जड़ का इलाज, रूट का इलाज करने के वास्ते बाबा ने ये प्रोग्राम डेवलप कराया, क्योंकि बाबा को ऑलरेडी पता है कि महामारी फैलेगी जो, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, और इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो भगवान को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए उसका नाम दिलवाला है और उसका नाम दिलाराम है, दिल को आराम देने वाला। सारे विश्व में ये जोर से डंका बजेगा कि हाँ दिलाराम दिलाराम दिलवाला दिलवाला। देखो तो प्रैक्टिकल प्रूफ है ना, आपका ही प्रूफ है जो आप कैसे थे और आप कैसे हुए हैं।
मेरा नाम कमल मिड्डा है, दिल्ली से आई हूँ। डॉक्टर शारदा की छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है और स्कूल में जॉब करती थी पहले, अब रिटायर्ड हूँ। वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए हुए हैं, अब तो इतना अच्छा गाया नहीं जाता, पहले मैं बड़ी अच्छी सिंगर थी। भजन है, वैसे तो गीत कोई भी बोल हो आप जिधर उसका मीनिंग ले जाओ तो वो ही लगता है। Yeah। तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू तुम भय तरुवर मैं भई पतिया तुम भय सरवर मैं भई मच्छिया तुम भय गिरिवर मैं भई तारा तुम भई चंदा हम भई चकोरा जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूंगे तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू तुम भय मोती प्रभु जी हम भय धागा तुम भय सोना हम भय सुहागा बाई मेरा के प्रभु ब्रिज के वासी सुनो हे गोपाल सुनो हे गोपाल तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी मैं तेरी दासी जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं रे तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू कृष्णा कौन संग
मैं एक्सरसाइज वगैरह काफी करता रहता हूँ एरोबिक्स भी काफी करता रहता हूँ कोई चांस नहीं था हार्ट की प्रॉब्लम होने का तो आईएमजी वैश्या बैंक से मैंने इंश्योरेंस लेनी थी तो उन्होंने कहा कि आपका 50 से अबव है तो बेटर आप मेडिकल चेकअप करा लो तो मेडिकल चेकअप कराने गए तो उन्होंने ईसीजी में कहा कि ठीक नहीं है फिर टीएमटी किया तो वो भी बोला स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो मेरे को कहा कि इको करवा लो और एंजियोग्राफी करवा लो तो मेरे लिए कोई विश्वास नहीं होगा मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल कोई जरूरत नहीं ना ही मुझे कभी प्रॉब्लम हुई तो हम उधर सेंटर में जाते हैं 15 सेक्टर हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है सेंटर में जाता हूँ तो उसके बाद वॉकिंग पे मेरे साथ यहाँ से एक भाई हैं एमपी अग्निहोत्री जो यहाँ से कैट का प्रोग्राम अटेंड करके गए हुए हैं तो वो काफी तारीफ किया करते थे डॉक्टर साहब की कि वहां पे काफी अच्छा इलाज है और मैं कैसे कैसे वहां दिल्ली से वहां जाके बाईपास सर्जरी को छोड़ के ठीक हो गया वहां तो मैंने उससे वैसे डिस्कस किया कि एंजियोग्राफी मुझे करवानी चाहिए नहीं मैं तो उसको सीरियसली नहीं लिया तो वो कहते अब बेटर आप डॉक्टर साहब से सीधी बात कर लो तो एंजियोग्राफी कराने में कोई हम तो नहीं है तो सेंटर में हमारे अनीता दीदी हैं उन्होंने फिर डॉक्टर साहब से मेरी डायरेक्ट फोन पर बात करवाई मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे इन्होंने डॉक्टर्स ने मेरे को एंजियोग्राफी के लिए बोला है और साथ में कहा है कि 70% से अगर अबव आपके ब्लॉकेजेस हुए तो आपको स्टंट डलवाना पड़ सकता है तो बेटर है आप साथ में प्रिपेयर होके आओ तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि हमारे अगर 100% भी ब्लॉकेज हुए तो भी हमने एंजियोग्राफी नहीं करवानी है सॉरी एंजियोप्लास्टिक नहीं करवाना है स्टंट नहीं डलवाना है हमें तो एंजियोग्राफी आप करवा लो उसमें कोई हक नहीं है तो मेरे को डॉक्टर साहब की बात इतनी अच्छी लगी, इतना अपनापन लगा, जब उन्होंने बोला कि हमारे अगर 100% भी ब्लॉकेज हुए तो हमने स्टंट नहीं दिलवाना है, मुझे लगा कि मेरी जगह पे बैठ के वो बोल रहे हैं, तो उनकी ये बात मेरे को ना यहां तक खींच लगी। तो फिर यहां जब हम कोर्स अटेंड करने आए तो पहले दिन इंट्रोडक्शन कोर्स हुआ, तो सामने बैठे इन्होंने कहा कि आप दिल के पेशेंट नहीं दिल वाले हो। फिर इनकी एक बात मेरे को याद आया, इन्होंने कहा कि आप में से किसने शोले फिल्म देखी है, तो वो बताया कि उसमें एक डायलॉग था कि जो डर गया सो मर गया, तो आपने डरना नहीं है दिल की बीमारी से, लेकिन उस दिन तो डॉक्टर साहब ने बोला था, आज मैं कहता हूं कि आप में से किसने 2 आंखें 12 हाथ देखी है, हाथ खड़ोगे। उसमें आपको याद होगा जेलर था और उसके पास 5 करोड़ कैदी थे उसकी जेल में, कोई खून करके आया था, कोई बहुत बड़ा मतलब जुल्म करके आया था जिसकी वजह से उनको कैद हुई थी, तो मेरे को वो उनकी उसकी उस जेलर की शक्ल अभी तक नहीं भूली। उसने ये तय किया था कि इन ये जो आए हैं इनके कोई रूट कॉज को देखो, ये क्यों ऐसे इतना बड़ा वो अपना जुल्म करके आए हैं जो इनको कैद मिली है। फिर उन्होंने एक एक से पूछा कि क्या वजह थी, उसके पीछे क्या वजह थी, तो उसने उनको बदलने के लिए अपने गवर्नमेंट से परमिशन ली, उनको बाहर ले जाके उनको बिल्कुल इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने कैंप लगाया उसमें इसी तरह का दिखाया गया था कि उनको कैसे सुधारा गया। तो हम यहां आके बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब वो जेलर है और हम वो कैदी हैं जो 5 विकारों वर्ष अपना हार्ट की प्रॉब्लम लेके आए हैं। सो यहां आके बहुत अच्छा लगा, और हमारा भी मतलब इतनी देर से जा रहे थे सेंटर पे इतना योग नहीं लगता था, लेकिन यहां आके डॉक्टर साहब जैसे जैसे एडवाइस किया वैसे वैसे हमने फॉलो किया, योग भी बड़ा अच्छा लगा। तो आज का एक छोटा सा मैं अनुभव तो नहीं अनुभूति कह सकता हूं, सुबह जब इन्होंने बोला कि आपका लास्ट ऑपरेशन है तो ऊपर गए, तो अपने असिस्टेंट सर्जन जो है वहां तक जब पहुंचे रिश्ता रूप में, तो उनसे उनकी आंखों में से निकल निकल के मेरे माथे पे मतलब रेज बहुत तेज रेज आ रही थी, किरणें जिसको कह सकते हैं हम, और जो ज्ञान की किरणें, शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, प्रेम की, आनंद की और सुख की और शक्ति की किरणें आ रही थी, जो कि हमारी आर्टरी को खोल रही थी धीरे धीरे, और कंटिन्यू मैं उनकी आंखों में देखता रहा, तो ऐसे लग रहा था कि ऊपर से शिव बाबा की जो नजरें हैं उनमें समा के हमारी उनकी नजरों से किरणें बनके हमारे हमारी आत्मा में आ रही हैं और नीचे को जा रही हैं। तो 15-20 मिनट मैं कंटिन्यू देखता रहा और मेरे मुंह से एक मतलब उस समय का अनुभव बताता हूं, जो गाना गीत निकल रहा था पुराना, तो आप भी उसमें आपको भी मैं सुनाता हूं। सदके जाए तेरी नजर के तीर चलाए जी भर भर के, सदके जाए तेरी नजर के तीर चलाए जी भर भर के, जी उठे हम तुझ पे मर के, हाल दिल न पूछिए हाल दिल अजीब है, हाल दिल न पूछिए हाल दिल अजीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है बड़ा खुश नसीब है। हम तो कहां थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल, हम तो कहां थे तेरे काबिल, तेरा करम है
तूने दिया दिल खुद ही चल कर आ गई मंजिल, वो तो बादशाह है भले ही गरीब है, वो तो बादशाह है भले ही गरीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है।
इस तरह से बाबा का थैंक्स करते हुए नीचे पहुंचे।
पहचान तुझे पाई अनमोल खुशी ना जो झूमो रे,